بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسول الكريم. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ہماری امت کے مقدس بزرگ اور مائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بہترین علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دین کی بات سننے کے لیے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائیں اور ہمیں آخرت کی تیاری کا بہترین ذخیرہ بنائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں برکت کا سوال کرتے ہیں، اور ہر خیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، اور جن چیزوں کے شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. جن علماء اور بزرگوں کی باتیں یہاں بیان ہوں گی، دعا فرمائے کہ اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور انبیاء صدیقین صالحین کے ساتھ آخرت کے اونچے درجات عطا فرمائے. علم کی مجلس کے بہت فضائل ہیں. فرشتوں کی جماعت ایسی جگہوں کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں جمع ہو جاتے ہیں. جو لوگ دین سیکھنے جاتے ہیں ان کے راستے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے. جس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو آسمان والوں کے لیے نور کی طرح چمکتے ہیں. جو لوگ اللہ کے واسطے ایک جگہ بیٹھے اور واپس گئے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، وہ قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے. محترم ماؤں اور بہنیں، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں جمع ہونے کا مقصد جو ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیں، اور ہم سب توبہ کر کے پچھلے تمام گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہو جائیں، ہمارے اندر صبر، شکر، استغفار کی صفات آ جائیں، ہر موقع پر ہم اللہ کی پناہ مانگنے والے ہو جائیں، ہر موقع پر ذکر کرنے والے ہو جائیں، ہمارے ذمے جتنے حقوق اور فرائض ہیں ہم بہترین طریقے سے، سنت طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائیں. روح کی، دل کی جتنی روحانی بیماریاں ہیں ہم کس طرح ان سے بچ جائیں. مخلوق کے جتنے جھگڑے ہیں اور نفس اور شیطان کے وسوسے ہیں ان سے ہم بچ جائیں. ہماری آنکھ، زبان اور دل غلط باتوں سے بچ جائیں. اور جو ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ سب ہم اللہ کی یاد میں، ذکر، دعا، اچھی نیتیں، اچھی باتیں، ہم جو ہے رحمت کا بن جائیں. یعنی ایسے لوگ، ان کو بشارت دی گئی کہ جہاں جاتے ہیں نیکیوں کی چابی بن جاتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے خاندانوں میں نیک باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں جاتے ہیں برائی کا تالا بن جاتے ہیں، ہر بری بات کو بند کر دیتے ہیں حکمت کے ذریعے. تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلب پر عطا فرماتے ہیں. اس چیز کی کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ یہ بات ہے کہ طلب اور عقیدت اور احترام سے ہم بات سنیں کہ بھائی میرے فائدے کی بات. جتنی جو ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ مسجدوں میں بات چلتی رہتی ہے، اور ہمارے علماء مفتی حضرات بتاتے رہتے ہیں، یہاں پر صرف اشارے کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے. تو جس کے دل کو جو بات لگ جائے، اس طرح یہاں اللہ کی نعمتوں کا مذاکرہ ہوگا، ذکر، تسبیح، تلاوت، درود، ان کے فائدے بتائے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اور کچھ جو ہے بزرگوں کی حکایتیں، ایسی باتیں جن سے ہمیں شوق پیدا ہو دین کا، اور کچھ عام گناہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں، زبان کے، آنکھ کے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان سے ہم کس طرح سے بچ جائیں، دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، جنت کے حالات ہمارے سامنے ہوں، توبہ کی فضیلت سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں دعا کی حقیقت معلوم ہو جائے. تو ان حلقے میں ان چیزوں کے بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو آدھی آدھی سینچری محنت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں سے بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں، پھر وہ اپنے پوری زندگی کا نچوڑ کچھ کتابیں کمپائل کرتے ہیں، ان کتابوں میں سے ایکسٹریکٹ نکال کے، جو ہم جیسے بہت مصروف اور کمزور حضرات ہیں کہ بھائی ہم دور دور نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 5 منٹ میں بتا دیا جائے کہ کیا ہے، تو ان چیزوں کا نچوڑ، سمری، جیسے کوئی CEO کی ویب سائٹ ہوتی ہے، صبح کھولا، بتایا دنیا میں جو کچھ مجھے بتا دو، میرے پاس صرف 2 منٹ ہے، بس ایسے ایک نظر ڈالنا. تو اس حلقے میں شوق دلانا ہے کہ وہ یہ کام ضروری ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے. جس کو اللہ توفیق دے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس میں ہم سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اور کچھ دعائیں اور ذکر سے بات شروع کرتے ہیں، جن میں یعنی کم وقت میں بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. کی مختلف احادیث ہیں، ہم کوئی بھی باب ذکر کوئی حدیث کی کتاب میں، دعاؤں کی کتاب میں کھولیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ مداد کلماتہ ربع نفسہ وزنت عرشہ مداد کلماتہ، اس کو 3 مرتبہ جو پڑھ لے تو اس کو کئی گھنٹے ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو ہے استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اگر 3 مرتبہ پڑھ لے یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، تو کتنے ہی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت بشارتیں ہیں. ایک استغفار امت کے لیے کرنا چاہیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو امت میں جتنے مسلمان ہیں ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اربوں نیکیاں جو ہے چند منٹوں میں. بہت مصروف ہیں بھائی، کچھ نہیں 5 منٹ دے سکتا ہوں، تو یہ چیزیں ایک ڈائری میں لکھ لیے، فون میں لکھ لیے، دن میں صبح شام پڑھ لی، فائدہ ہو جائے گا. تو ایسے فرمائے گا کہ جو بہت مصروف ہیں اور امیر ہیں بادشاہ ہیں ان کو بھی ذکر سے نہ روکو، کہ لوگ نرم نرم بستروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان سے ان کو جنت کے اونچے درجات میں پہنچا دیتے. تو ذکر ایسی چیز ہے کہ چھوٹا بڑا، امیر فقیر غریب سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کو جتنا وقت. درود شریف پڑھنا چاہیے. آج جو ہے وہ ایک خاص درود شریف ہمارے ایک بھائی نے چھپا کے بھیجا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. درود شریف میں ایسا ہے کہ یہ ایک طرح سے دعا ہے، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ درست ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی بعدد انفاس الخلائق صلاة دائمة بدوام خلق اللہ. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ درود بھیجئے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جو آپ کے خاص بندے رسول اور امی نبی ہیں، درود بھیجئے ان پر اپنی ساری مخلوقات کی سانسوں کے برابر جو ہمیشہ خلق خدا کے رہنے تک جاری رہے، یعنی اتنے درود بھیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یعنی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی بعدد انفاس الخلائق صلاة دائمة بدوام خلق اللہ. درود شریف کی کوئی کتاب لے لیں، حکیم الامت کے نے 40 درود شریف جمع فرمائے، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے پھر اس کو لکھا، اوکے، بہت اچھی کتابت میں، اس میں سارے جو ہے مستند حدیثوں سے کون سا درود بخاری شریف میں ہے، کون سا درود مسلم شریف میں ہے، انہوں نے جمع کیے 40 حدیثیں. تو جو آدمی 40 حدیثیں جمع کر کے ان کو امت میں پھیلا دے تو اس کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، ایک بیٹھے بیٹھے ثواب کا موقع ہے، اس کو ہر جمعے کو پڑھ لیا جائے، موقع ہو تو روز پڑھ لیا جائے، 5 منٹ لگتے. تو درود شریف کی یہ کتاب جو ہے 40 مستند درود شریف جو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں آئے ہیں ان کا ایک مجموعہ حضرات نے کمپائل کیا تھا، جو یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے اس کی کتاب بنا کے اسلام ایزی ویب سائٹ میں ڈال دی ہے، تو اس میں اردو کا سیکشن ہے، اسلام ایزی اردو بکس، اس میں جائیے، درود شریف کی کتاب کا PDF اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہیں، منجیات ہیں، قرآن کی آیات، صبح شام پڑھنے کی دعائیں، اس کے کارڈ بنے ہوئے ہیں، وہ پرنٹ کر لیجئے یا کمپیوٹر اسکرین سے پرنٹ. تو ہم جہاں کہیں ہوں دعاؤں کا ہم جو ہے درود شریف کا معمول بنائیں. لوگوں کو جو ہے تشویش ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں، دنیا میں حالات ہیں، محلے کے حالات ہیں، تو ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں حفاظت ہوتی ہے. مستند حدیث شریف میں آئے کہ کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے صبح میں تو کوئی نقصان اور مصیبت نہیں پہنچتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور بہت کسی کو کوئی مشکل میں گرا ہوا ہو تو آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حدیث شریف میں آیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، عرش کا خزانہ ہے، جو ہے 99 چیزوں کی دوا ہے، جس میں سب سے جو عام سی چیز ہے وہ غم ہے، غم پریشانی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کثرت سے درد ورد کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعاؤں کا سبق پڑھا جائے گا، بعض دعائیں ایسی ہیں ان سے آدمی کی فکریں دور ہوتی ہیں اور ان سے جو ہے قرض ادا ہو جاتے ہیں، ان دعاؤں کا ایک سبق. یہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب کی کتاب ہے، مسنون دعائیں، بہت مشہور ہے، ملتی ہے بک سٹورز میں، مسنون دعائیں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، तो दुआ तो इसमें अरबी और उर्दू तर्जुमा है, और इंग्लिश में भी ये किताब मिलती है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सुमरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें एक हदीस ना सुनाऊँ जो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सुनी, और अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु उमर रदी अल्लाह अन्हु से भी कई मरतबा सुनी। मैंने अर्ज़ किया ज़रूर सुना है। उन्होंने फरमाया जो शख्स सुबह और शाम ये दुआ पढ़े तो जो चीज़ अल्लाह से मांगे ज़रूर देंगे। इसमें नीचे फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम रोज़ाना 7 मरतबा इन कलिमात के साथ दुआ किया करते थे, तो जो चीज़ भी अल्लाह से मांगते थे अल्लाह उनको अता फरमाते थे। खास दुआ है, अल्लाहुम्मा अंत खलकतनी व अंत तहदीनी व अंत तुत्तइमुनी व अंत तस्कीनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयीनी। ए अल्लाह, आपने ही मुझे पैदा किया, आप ही मुझे हिदायत देने वाले हैं, आप ही मुझे खिलाते हैं, आप ही मुझे पिलाते हैं, आप ही मुझे मारेंगे और आप ही मुझे जिंदा करेंगे। अल्लाहुम्मा अंत खलकतनी व अंत तहदीनी وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني। ज़रूरी नहीं कि दुआ अभी याद हो जाए या पूरी लिख ली जाए, ये दुआओं की किताबें या बाज़ मरतबा दुआओं के कार्ड में ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसका मफहूम अगर समझ लिया जाए कि दुआ के वक्त अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आपने मुझे पैदा किया, आप ही हिदायत देने वाले हैं, आप ही मुझे खिलाते हैं, आप ही मुझे पिलाते हैं, आप ही मौत देंगे, आप ही जिंदा करेंगे, फिर अपनी दुआ शुरू करेंगे, या अल्लाह ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। कर्ज अदा करने के लिए दुआएं, ये हदीस शरीफ है, उसमें मशहूर दुआ है। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बड़े बड़े तफक्कुरात और बड़े बड़े कर्ज़ों ने पकड़ लिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं ऐसे अल्फाज ना बता दूं जिनके कहने से अल्लाह तुम्हारे तफक्कुरात, तुम्हारी फ़िक्रें, परेशानी दूर कर देगा और तुम्हारे कर्ज़ को अदा फरमा देगा। उस शख्स ने अर्ज़ किया ज़रूर इरशाद फरमाएं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह शाम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कस्ली व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुबनी وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال। ये अबू दाऊद की रवायत है। तर्जुमा पढ़कर दोबारा अरबी पढ़ेंगे। या अल्लाह हम आपकी पनाह लेते हैं, या अल्लाह मैं तेरी पनाह लेता हूँ हर फिक्र और गम से, और तेरी पनाह लेता हूँ आजजी और काहली से, और तेरी पनाह लेता हूँ बुजदिली और बुख्ल से, और तेरी पनाह लेता हूँ कर्ज के गलबे और लोगों के गौर जुल्म से, तो आप मुझे उन सब से बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ये जुमला बार बार इसमें आएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कस्ली व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुबनी व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। तो इंशाल्लाह अगर आप कोई दुआ की किताब आपको मिल जाए मुस्तनद, या आप वेबसाइट में जाकर वहाँ सर देख लें, तो ये दुआ भी, इस तरह की दुआएँ आपको मिल जाएंगी। एक किताब हम लोग पढ़ते हैं, नेकियों के पहाड़ मिनटों में, नेकियों के पहाड़ मिनटों में। इसमें मुसन्निफ़ ने सही अहादीस से ऐसे आमाल जमा किए कि कम वक्त में ज़्यादा सवाब मिल जाए। जो मसरूफ़ लोग हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है, अब बहुत लंबी लंबी तस्बीहात नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ी बहुत कहाँ तक पढ़ी जाए उसकी बात। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अम्र बिन शुआब अपने बाप से व अपने दादा से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मर्द हो या औरत 100 मरतबा सुबह को और 100 मरतबा शाम को सुबहान अल्लाह कहे, वो उस शख्स की तरह है जिसने 100 हज किए, और जो शख्स सुबह को 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे और शाम को भी 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वो उस शख्स की तरह है जिसने 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में सवारी के लिए दिए, 100 घोड़ों के डोनेशन दी। जो शख्स 100 दफ़ा सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और 100 दफ़ा शाम को कहे, तो उस शख्स की तरह है जिसने 100 आदमी औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम के 100 गुलाम आज़ाद किए। और जो आदमी सुबह को 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहे, शाम को भी 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहे, तो कोई उस दिन में उससे बढ़कर अमल नहीं ला सकता, मगर वो शख्स जो उसकी तरह कहे या उसके कहे पर जायद कहे, एक आम से अमल पर कि एक तस्बीह सुबहान अल्लाह, इनको अलग अलग भी पढ़ा जा सकता है। एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की पढ़ ली, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ ली, और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, जिसको तीसरा कलमा कहते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके साथ में बाद लोग ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ते हैं। तो चलते फिरते ऐसे कलिमात पढ़ते रहने चाहिए। बाज़ मशायख का मामूल है ये कि चलते हुए या तो ये तस्बीह पढ़ेंगे या दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिसको जिसमें से मुनासिबत हो तो वो पढ़ेंगे। तो इसमें मुसन्निफ़ ने किताब में ये लिखा है कि जो इसको पढ़ेगा तो एक दिन में 100 हज का सवाब एक तस्बीह पढ़ने पर, एक महीने में 3,000 हज का सवाब, यानी ये नफिल हज हैं। जो फ़र्ज हज है वो ख़त्म नहीं होगा, वो तो जाना पड़ेगा, वहाँ बरकत अलग हैं, और काबा शरीफ में 1-1 लाख नेकियाँ, वो एक अलग चीज़। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक हज करने का सवाब इन तस्बीह पर आपको मिल रहा है अलग से। 1 साल में 36,000 हज का सवाब, और 20 साल में वो फरमा रहे हैं कि 72,000, 72,000 हज का सवाब। तो बैठे बैठे ये मिलियन बिलियन आदमी को मिलते हैं, ये छोड़ने नहीं चाहिए। गाड़ी में जा रहे हैं तस्बीह पढ़ने में क्या है, तस्बीह तो भाई बिला वजू बे वजू कोई भी हर वक्त हर हाल में पढ़ सकता है। एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक जाने में सुबहान अल्लाह की तस्बीह हो गई, वो आगे पहुंचे तो अल्लाह अकबर की हो गई, उसके आगे पहुंचे दुरूद शरीफ की हो गई, दफ्तर पहुंचते हुए तो सारा पढ़ ली, मंजिल पढ़ ली, जिनको कुरान याद है वो कुरान पढ़ते हुए चलेगा। जिक्र के फजाइल, लोगों ने किताबें लिखी हैं, मशाइख ने, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र के फ़ज़ाइल में एक रिसाला लिखा है, जिसमें फरमाते हैं कि ज़िक्र करने में 100 से ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर याददहानी के लिए पेश की जाती हैं। अल्लाह का ज़िक्र शैतान को दफ़ा करता है और उसकी क़ुव्वत को तोड़ता है, अल्लाह की खुशी का सबब है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है, जो इस्लाम की रूह दीन का मरकज़ और नजात का मदार है। अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई, बस कामयाब हो गए। दिल से रंज और गम को दूर करता है, डिप्रेशन का इलाज है अल्लाह का जिक्र कर। दिल में खुशी पैदा करता है, जिस्म और दिल को कुव्वत देता है, अल्लाह का जिक्र करने से चेहरा और दिल मुनव्वर नूरानी हो जाता है, आदमी नूरानी हो जाता है। जैसे पहले अर्ज किया गया था कि जो तहज्जुद की नमाज पढ़े या नमाज में लंबे लंबे सजदे किए नफिल नमाज में, जिनके कोई तबीयत सेहत में ख़राबी ना हो, लंबे सजदे करने में कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसके आदमी का चेहरा नूरानी हो जाता है। और उसकी एक साइंटिफिक वजह भी है साइंसी, कि आदमी के जो है वो यानी चेहरे पर खून का दौरान बढ़ जाता है, तो उससे भी आदमी का चेहरा नूरानी हो जाता है। ऐसे आदमी को जो जिक्र करता है उसको देखने से रोब पड़ता है, दिल को जिंदा करता है। अल्लाह का जिक्र एहसान के दर्जे तक ले जाता है, यानी ऐसी इबादत नसीब होती है जैसे कि अल्लाह को देख रहे हैं। आखिरी मशायख को जो हालत नसीब होती है, फरमाते हैं कि ऐसी इबादत करो गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं, और आप नहीं देख रहे तो वो तो आपको देख ही रहे हैं हर वक्त। तो ऐसे एहसानी कैफियत के साथ इबादत करनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र अल्लाह का कुर्ब पैदा करता है, हर मुसीबत में अल्लाह की तरफ तवज्जो, हर चीज़ में अल्लाह ही जाए पनाह, अल्लाह की मारफत का दरवाज़ा है, अल्लाह की बड़ाई दिल में पैदा करता है, दिल की वहशत को दूर करता है। जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमको याद करेंगे। अल्लाह का जिक्र दिल और रूह का रिज्क है, दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। तो आप खुद समझ लीजिए कि पानी के बगैर मछली का क्या हाल होता है। जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा आदमी की तरह है, और जिक्र नहीं करने की मिसाल मुर्दा आदमी की। हालांकि चलता फिरता है, खाता है, खाते तो जानवर भी हैं दूसरे भी हैं, लेकिन जिक्र करने वाला आदमी जिंदा है। फरमाया गया गफलत वालों के दरमियान जिक्र करेंगे तो और सवाब होगा। जैसे बाजार में गए और आदमी जो है खरीदो फरोख्त में भी अल्लाह को नहीं भूला, और वहाँ पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, 10 लाख नेकियां, मिलियन गुड डीड। यानी जब भी बाजार किसी ज़रूरत की वजह से जाना हुआ तो उसमें निगाहों की हिफाजत की, अल्लाह के से डरते हुए गए और जिक्र करते हुए गए, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख नेकियां जो है वो बाजार जाने में मिल जाती। कितनी जो है वो बड़ी बात है, फजीलत की बात है। اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بالکل سمپل سی بات ہو رہی کہ ایک تسبیح پڑھ لیں, ایک نہیں پڑھ 100 دفعہ نہیں تو 10 دفعہ پڑھ لیں, نہیں تو 11 دفعہ پڑھ لیں. یعنی یہاں پر لاکھوں لاکھ تسبیح پڑھنے کے نسخے نہیں بتائے جا رہے, بلکہ یہ ہے کہ ہم کچھ عادت ڈال لیں, گاڑی میں چلتے ہوئے, گھر میں کام کاج کرتے ہوئے, دروازے سے نکلتے ہوئے, آتے ہوئے, مسجد جاتے ہوئے, اتنی کون نہیں پڑھ سکتے, 2-3 منٹ لگتے, وہاں سے شروع کیا جائے. یہ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے با ادب با نصیب. اس میں حضرت نے ہر چیز کا ادب لکھا ہے, اور ادب کے ذریعے ہی سے اللہ کی محبت اور یہ معرفت, یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس لیے خاص طور سے جو ہے اس چیز کو اہتمام سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. حضرت نے علم کے فائدے لکھے ہیں, اور جو علم سیکھنے والے ہوں ان کے لیے آداب لکھے ہیں. فرمایا کہ علم سے دوست بنتے ہیں اور مال سے حاسد بنتے ہیں. علم کے چوری ہونے کا ڈر نہیں جبکہ مال کو امن نہیں. علم پرانا ہو تو اور عمدہ ہو جاتا ہے, فائدہ مند ہو جاتا ہے, مال پرانا ہو تو کم قیمت کا ہو جاتا ہے. صاحب علم کی کرامت بڑھتی ہے اور صاحب مال کی شرمندگی بڑھتی ہے. علم کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے, یعنی جتنا سکھاؤ گے, جتنا بولو گے اور بڑھے گا, اور مال کو خرچ کیا جائے تو گھٹ جاتا ہے. روز محشر علم کا حساب نہیں لیا جائے گا جبکہ مال کا حساب دینا پڑے گا. علم انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے. اس میں حضرت نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں کہ کیسے ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت سے علم حاصل کیا, تاکہ ہمیں قدر معلوم ہو کہ کیسی کیسی انہوں نے محنت سے علم حاصل کیا اور کتنے ان کو محبت تھی علم سے. ہندوستان میں بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بایوگرافی میں سے, ان کے سوانح حیات میں سے ایک تذکرہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب زبان طالب علمی میں جب وہ چھوٹے تھے تو وہ حاضر ہوئے دارالعلوم میں داخلہ لینے کے لیے, تو وہاں کے مہتمم ناظم صاحب نے بتایا کہ اس گاؤں میں کہ لوگ جتنے پڑھنے والوں کی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے اسٹوڈنٹ کو داخلہ دے دیا گیا ہے, ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے یہاں مطبخ یعنی کچن کا انتظام نہیں ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی روٹی کا انتظام مختلف گھر سے ہوتا ہے, تو محلے والے جتنے لوگوں کی روٹی دے سکتے تھے وہ ہم نے ان کو داخلہ دے دیا ہے, آپ بعد میں آئیں آپ کا داخلہ نہیں, معذرت کریے. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنی روٹی کا ذمہ خود قبول کر لوں تو کیا سبق میں کلاس میں حاضری کی اجازت مل جائے گی, داخلہ نہیں ہوتا, چلو میں اپنی روٹی کہیں سے خود انتظام کروں گا, آپ بس مجھ کو سبق میں بیٹھنے دیجیے. ناظم صاحب نے داخلہ دے دیا. جب آپ روزانہ سبق پڑھتے فارغ ہوتے تو رات ہو چکی ہوتی, اکثر جو ہے طلبا دوسرے جو تھے اسٹوڈنٹ سو جاتے, اس وقت آپ باہر جاتے اور پھلوں کی دکان کے ساتھ پڑے ہوئے چھلکے کھا لیتے. دن بھر کچھ نہیں کھایا, کوئی روٹی کوئی دوپہر کا کھانا نہیں, دن بھر سبق پڑھا, رات کو جب سو دکان کے ساتھ پھلوں کی دکان کے ساتھ پڑے ہوئے چھلکے اٹھا لیتے, پھر انہیں دھو کر کھا لیتے, پھل نہیں کھائے صرف چھلکے کھائے. اس سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا مگر سبق چھوڑانے نہیں دیا. آپ کی قناعت کا عالم یہ تھا, ایک دفعہ راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا کمبل کوڑے میں پھینکنا چاہتا ہے, جیسے ہمارا رواج ہے 1-2 سال ہوگا یہ کمبل پھینکو, یہ چیز پھینکو, یہ کرسی پھینکو, دوسری لے کے آؤ, یہ چیز اچھی ہے یہ. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کمبل کو کوڑے میں پھینک رہا ہے پرانا, تو انہوں نے کہا بھائی کیوں پھینک رہا ہے؟ اس نے کہا پرانا ہو گیا ہے. آپ نے کہا کیا میں یہ کمبل میں لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں لے جا, خوش ہو گیا. آپ وہ کمبل اٹھا کر لائے, اسے دھویا, سردیوں میں آدھا نیچے بچھا لیتے آدھا اوپر اوڑھ لیتے, جب گرمیاں آتی تو سارا تہ کر کے نیچے بچھا لیتے, یعنی آپ کا بیڈنگ ہو گیا. 15 سال اسی حالت میں گزار دی. ایسے جو ہے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل, اللہ نے ان سے دین کا کام لیا, پھر ان کے شاگردوں نے پوری دنیا میں دین پھیلایا قربانی کے ذریعے. جس وقت جن کو اللہ نے بہت حالات دیے الحمدللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر, جن کو نہیں دیے تو بھی کام نہیں چھوڑنا کہ لگے رہے اس میں پھلوں کے چھلکے کھاتے. भाई बेहतरीन इल्म सीखने वाले वो हैं जो अकीदत एहतराम के साथ बावजू सब काम छोड़ के क़िबला रू कहीं बैठे, कोई कागज़ कलम हाथ में है, ध्यान है, शौक़ है, दुआ जिक्र से, क्योंकि तो अल्लाह मुझे ये बातें सिखा दीजिए और मेरे अंदर से बुराई चीज़ें दूर कर दीजिए। नरम दिल बात का असर लेने वाले। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बयान चीज़ें, किताबें, खुतबे, कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं। क्या वजह है कि दीन दिल में नहीं आ रहा? वो अदब वो एहतराम नहीं रहा। हर चीज़ को डिस्कशन के तौर पे लेते हैं कि अच्छा देखा जाएगा, फिर कल सोचेंगे ये ऐसा है, वो कुछ और कह रहा था, बस अगर मगर में रहते हैं, बात नहीं समझ में आती। और मैं कह कि तुम अपनी मस्जिद के मुअज्जिन से भी दीन सीख लोगे अगर अकीदत और मोहब्बत हो। अकीदत मोहब्बत नहीं होगी तो दुनिया का बड़ा ग्रैंड मुफ्ती भी आ जाएगा, आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि आप हमेशा शक में रहेंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो हमें जो है अल्लाह ताला अदब सीखने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम इल्म दीन को जल्दी जल्दी सीख सकें। आमीन। एक किताब है मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब की, मिसवाक के फजाइल। मिसवाक के फजाइल, जैसे फरमाया गया कि एक सुन्नत को जो जिंदा करे तो उसको कितने शुहदा का, एक रवायत में कि 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मिसवाक जो है उसको करने से आदमी को क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसका थोड़ा सा एक सबक, इस किताब का खुलासा हजरत ने आखिर में लिखा है। पूरी किताब है, उसमें अहादीस शरीफ और सहाबा का तर्ज अमल और सहाबियात का वो पूरी किताब में लिखा हुआ है, मिसवाक के फजाइल और उसके दीनी और दुनियावी फायदे। एक मरतबा एक मुसलमान डेंटिस्ट हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मुख्तलिफ जो एक कोई मशीनी जो टूथ ब्रश है उसकी जो शक्ल है वो असल में मिसवाक में से ली गई है, उनकी अपनी इजाद नहीं है, बल्कि मिसवाक का जो मुंह होता है जिस तरह गोल, उस तरह वो उन्होंने बनाया है, उसमें से कर ली। अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने आरिफ बिल्लाह शेख अहमद जाहिद की किताब तोहफत सिवाक फी फवाइल सिवाक के हवाले से मिसवाक के दीनी व दुनियावी फवायद लिखे हैं, जो मुख्तलिफ सहाबा अली रदी अल्लाह अन्हो, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हो, हजरत अता से मनकूल हैं, जिक्र किए हैं। मिसवाक करने से आदमी को अल्लाह की खुशनूदी हासिल होती है। मिसवाक से नमाज का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको बहुत मारूफ हदीस है कि 70 गुना बढ़ जाता है, उम्मुल मोमिनीन की रवायत और मुख्तलिफ और भी रवायतें। तो एक साल में अगर मिसवाक करके नमाज पढ़ रहे थे तो हिसाब लगाया, या 20 साल में उस किताब में हिसाब लगाया हजरत ने, कि जहाँ पर जो है आपको मिसवाक के बगैर ऐसी नमाज पढ़ रहे थे तो 20 साल में 36,500 नमाजों का सवाब मिलना था। अगर सिर्फ मिसवाक कर लिया नमाज करने पर से पहले तो 20 साल में 25,55,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। भाई कहाँ तो 36,000 और कहाँ 25 लाख, 1 मिनट के अमल से वही नेकियों के पहाड़ मिनटों में, तो छोड़ना नहीं चाहिए। मिसवाक को हमेशा इस्तेमाल करना रिस्क में इजाफे का बाइस है। मिसवाक इजाफा करने से रिस्क में वसात होती है, असबाब रिस्क की सहूलत का बाइस है, मुंह की सफाई होती है, मसूड़े की मजबूती है, दर्द सर दूर होता है, सर की रगों के लिए मुफीद है, दांतों की मजबूती है, आँखों को तेज करता है, मेदे को सही रखता है, बदन को ताकत पहुंचाता है, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाता है। तो कुरान याद करना है मिसवाक करते, बस दफ़ा मस्जिद में आ गए मुंह साफ नहीं है तो खुद अपनी नमाज में भी खलल होता है, बराबर में जो है जिससे मिले वो भी तंग होता है कि भाई किसी के मुँह से बू आ रही, और एक बड़ा उसको कह भी नहीं सकते कि भाई वो बुरा मानेगा वो, इसलिए कभी मजलिस में बता दिया जाता है कि मिसवाक करे आदमी और मुंह में कोई चीज़ फंस गई है तो सफाई करके। अकल बढ़ती है मिसवाक करने से, नेकियां बढ़ती हैं, फरिश्तों की खुशी का बाइस है, फरिश्ते नमाज के लिए उनके साथ चलते हैं। ये अच्छी क्या बात है, फरिश्ते नमाज में साथ चल रहे। अम्बिया की दुआ और इस्तिग़फ़ार का मुस्तहिक हो जाता है, चेहरा मुनव्वर हो जाने से फरिश्ते आकर मुसाफहा करते हैं। शैतान के नाराज और गुस्से होने का बाइस है, पुल सरात से बिजली की तरह गुजारने वाला है, बुढ़ापा देर से लाता है, नामे अमाल दाएं हाथ में मिलता है। बहुत सारे जो है इस तरह के फजाइल हजरत ने जमा किए हैं। कलमाए शहादत मौत के वक्त याद दिलाता है, सबसे अहम इम्तहान आदमी ईमान के साथ दुनिया से जाए, मिसवाक करने का एक फायदा। कलमाए शहादत मौत के वक्त याद दिलाता है, रूह निकलने को आसान करता है, कब्र में कुशादगी होती है, जो आदमी मिसवाक करता है उसको उस दिन मिसवाक ना करने वालों के बराबर लोगों का सवाब मिलता है, ये मुफ्त का सवाब है। जो आदमी मिसवाक करेगा उसको ना करने वालों का सवाब मिल रहा है। जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते मौत के वक्त इस तरह आते हैं जैसे औलिया कराम के पास आते हैं। तो ये जो है हजरात यानी मशायख के तजुर्बात हैं और उनकी रवायात उन्होंने जमा की हैं, उसकी अरबी की इबारतें चीज़ें पूरी पूरी किताबें हैं। हमारा इस हलके में यह है कि सिर्फ खुलासे के तौर पे, इशारे के तौर पे कोई एक दो सफ़े पढ़ देते हैं, जिसको शौक़ हो पढ़ता रहे। और जो है छोटे बच्चे होते हैं वो भी नरम मिसवाक उनको आदत डालनी चाहिए, छोटे फ़ायदे बता के भाई इतने फ़ायदे, ऐसा नहीं कि मिसवाक करो ज़बरदस्ती। और सहाबा के ज़माने में सहाबियात भी जो है मिसवाक अपने दुपट्टों में बांध कर रखती थी, उनके लिए नरम मिसवाक मिल जाए तो वो इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें मिसवाक करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इस हलक़े में बाज़ ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती हैं जिनसे हम कैसे हमारा एनर्जी ड्रेन जो है वो बच जाए, हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बहस मुबाहसे या जहाँ पर गुनाह का ख़तरा होता है और घरों में और कम्यूनिटीज़ में झगड़े होते हैं उनसे हम बच जाएँ, तो हमारा वक्त फारिग हो जाएगा, दिल दिमाग में कोई इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे, पूरा दिन जिक्र अच्छी बातें आएंगी। ये किताब है सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें 40 हदीसें जमा की कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। हर टॉपिक पे 40-40 हदीसें उलमा ने जमा की हैं, इन्होंने जमा की कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो उसमें से कुछ एक दो रवायतें पढ़ी जाएंगी। अब ये जो है ऐसी चीज़ है कि अगर ये चीज़ राइज हो जाए, समझ में आ जाए, तो हमारा बहुत सारा वक्त हमारे ख़ानदानों में फारिग हो जाएगा नेक काम करने की। फरमाते हैं कि आपस का झगड़ा बेबरकती और महरूमी का सबब है। ये बुखारी शरीफ की रवायत है जो मिश्कात शरीफ से लाई गई है। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शबे कदर की इत्तला फरमा दें। रमज़ान आ रहा है 2.5 महीने में, रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए वक्त फारिग करें। वह रमज़ान में हम कैसे इबादत करेंगे, 70 गुना सवाब मिलेगा। तो रमज़ान में एक रात है जो 1,000 महीनों से बेहतर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर तशरीफ़ लाए बताने के लिए कि शबे कदर किस रात को है, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। यानी ऐसे मुबारक मौके पर जब लोगों को ये बात मालूम हो जाती तो कितना फ़ायदा होता, लेकिन क्या हो रहा था बाहर कि दो मुसलमान झगड़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शबे कदर की खबर दूं, मगर फलां फलां शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसकी तायिन उठा ली गई, यानी वो इल्म वापस ले लिया गया। क्या बाईद के ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब उसको 9वें और 7वें और 5वीं रात में तलाश करो, यानी आखिरी अशरे की। मुख्तलिफ और भी इसमें रवायात हैं। फरमाते हैं इस हदीस में एक अहम बात बताई गई कि झगड़ा इतनी बुरी चीज़ है कि उसकी वजह से हमेशा के लिए शबे कदर की का इल्म उठा लिया गया कि कब है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरकत से महरूमी का सबब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज़ बताऊं। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का सलूक सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मोड़ देने वाली है, जैसे उस्तरे से यानी रेजर से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं, इस तरह आपस की लड़ाई से भी दीन साफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कितनी यानी मुश्किल बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छुटाव रखे, यानी बातचीत बंद कर दे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। कहीं मिले एक कम दूसरी तरफ, दूसरे कम दूसरी तरफ बात नहीं कर रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन सलाम दुआ नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं। 3 दिन के अंदर सुलह सफाई, जो पहले सलाम में पहल करेगा उसको ज़्यादा सवाब होगा। हदीस में इरशाद है कि हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश होते हैं और अल्लाह की रहमत से मुशरिकों के अलावा औरों की मग़फ़िरत होती रहती है, मगर जिन दो आदमियों में झगड़ा होता है उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। इरशाद होता है कि उनको छोड़े रखो जब तक सुलह ना कर ले, जब तक आपस में सुलह सफाई ना कर ले। एक जगह इरशाद है कि शबे बरात यानी निस्फ शाबान में अल्लाह की रहमत आम मुतवज्जा होती है, जरा जरा से बहाने से मखलूक की मगफरत फरमाई जाती है, मगर वो शख्स दो आदमियों की मगफरत नहीं होती, एक काफिर दूसरा जो किसी से कीना रखे यानी बदहाही बोग दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, बस दिल में यही ख्याल रखता है कि दूसरे को किसी तरह से नुकसान पहुंचे, तो उसको बड़ा मसला है। यानी जब अल्लाह की रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, लोग रो रहे हैं, हरम शरीफ में दुआ हो रही है, फरिश्ते आ रहे हैं, यानी लाखों लाख आदमियों की कितनी बरकतें मिल रही हैं, ये आदमी उस दिन भी महरूम बैठे क्योंकि दिल में दूसरे के खिलाफ बुरी बुरी बातें लेके। एक जगह इरशाद है कि तीन आदमी हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, जिनमें आपस के लड़ने वाले भी बताए। तो ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि ये हुक्म हम दूसरों पे नहीं लगाएंगे, फलां आदमी लड़ने वाला है या उस महल्ले में ये ऐसा है वैसा है, देखो क्या कह रहे थे हल्के में, अपने लिए है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका ना आने दें, कभी कोई चीज़ है उच नीच फ़ौरन सुलह सफाई की, भाई मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया, आपने माफ़ किया, बात खत्म। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु, ये भी बुखारी शरीफ की रवायत है, फरमाया कि बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और दूसरों के ऐब की टोह में मत लगो, कौन क्या कर रहा है उसकी जासूसी देखना, इधर उधर से क्या किया उसने, ऐसा किया होगा, दिमाग में ख्याल पका लिया उसको, भाई देखा ऐसा हमने कहा था ऐसे ही किया होगा। बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, दूसरों के ऐब की टोह में मत लगो, ना जासूसी करो ना खरीद फरोख्त में भाव बढ़ाकर धोखा दो। एक आदमी कितने बेच रहा होगा, हम इतने बेचेंगे, उसका उसकी दुकान कम कराने के लिए ऊपर नीचे कर रहा है अपना भाव, था उसको खराब करने के लिए। ना एक दूसरे से हसद करो, ना एक दूसरे से बोग रखो, ना कता ताल्लुक करो, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो। बहुत अहम हदीस है इकरार मुस्लिम की, इससे पूरे माशरे में, घरों में सुकून इत्मीनान, घरों में। भाई एक आदमी अर्ज किया था कि कोई गलत है, भाई ठीक है गलत है, गुनाह कर रहा है ठीक है गुनाह कर रहा है, बात नहीं मानता ठीक है बात नहीं मानता, लेकिन मुसलमान है, कलमा गो है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आखिर को उसी के साथ चलना है उसको, तो अगर आप माफ कर देंगे, आप बड़े हैं, आप रहम का मामला फरमाइए, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत के अंदर महल दे। इसमें प्रूफ डिसप्रूफ नहीं है, बात ठीक है वो गलत है आप सही हैं, लेकिन आप माफ कर दीजिए आप थोड़ा दब जाइए, इससे जो है यानी घरों के खानदानों के झगड़ों का इलाज हो जाता है। इसमें राइट रॉन्ग का मसला नहीं है, दलील हलाल हराम नहीं, इसमें है कि भाई वो सब आप ही ठीक है, लेकिन आप ही इस वक्त छोड़ दीजिए। फरमा रहे थे कि घर में कोई हो तो उसमें क्या है कि एक आदमी कोई गड़बड़ दूसरे किसी ने कोई बात कह दी, दूसरा आदमी उस वक्त खामोश हो जाए, दुआ दे दे अल्लाह माफ़ फरमाए उस वक्त, तो इंशाल्लाह मामला रफा दफा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें जो है एक दूसरे का एहतराम करने और दूसरों के हकूक़ अदा करने का हमें जो है तौफीक अता फरमाए। एक आदमी ने, एक शागिर्द ने उस्ताद से पूछा कि ये अल्लाह वाले बुजुर्ग कैसे होते हैं, क्या क्या उनके रंग होते हैं, यानी किस टाइप के, किस मजाक के होते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि एक मस्जिद में जाओ, तीन बुजुर्ग बैठे होंगे वहाँ और उनको वो अल्लाह की याद में बैठे हैं, जाकर तीनों को एक एक मुक्का मारो, तीनों को एक एक जरा जोर से मारो मुक्का, और फिर देखो क्या करते। वो गया मस्जिद में, देखा तीन बुजुर्ग अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, पहले के पास गया और जोर से उनको एक मुक्का मारा, उन बुजुर्ग ने पलट के ही नहीं देखा, अपने तस्बीह जिक्र में दुआ में लगे रहे, उनको कुछ हुआ ही। तो आदमी ने कहा अच्छा ये, तो दूसरे बुजुर्ग के पास गया, उनको भी एक जोर का मुक्का मारा, तो उन्होंने भी पलट के एक जोर का वैसा ही मुक्का वैसा मार दिया, फिर अपने काम में लग गए, कुछ बोले तस्बीह करने जिक्र अल्लाह की याद में लग गए। तो उसने कहा अच्छा ऐसा एक रंग है, तो वो तीसरे बुजुर्ग के पास पहुंचा, और ये चूंकि वाकई अहम है, हमारे दोस्त तशरीफ लाए हैं दूर से, तो मैं दोहरा देता हूँ, इससे फायदा हो जाएगा, करीब तशरीफ लाइए। एक आदमी ने अपने उस्ताद से पूछा कि अल्लाह वालों के रंग कैसे होते हैं, अल्लाह वाले यानी किस मिजाज के कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मस्जिद में जाओ और वहाँ तीन अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे होंगे, तीनों को जाकर एक एक मुक्का मारो जोर से, और देखो कि वो क्या करते हैं, कैसा रिएक्शन करते हैं। तो वो आदमी आया मस्जिद में और पहले बुजुर्ग को जाके एक मुक्का मारा, तो उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, अपनी तस्बीह तलावत में अपने काम में लगे। तो वो आदमी पलट के दूसरे बुजुर्ग के पास पहुंचा, उनको एक मुक्का मारा, तो उन्होंने ही पलट के वैसा ही एक मुक्का मार दिया और फिर अपने काम में लग गए तस्बीह तिलावत में, और कुछ बात बात नहीं। तो उस आदमी ने फिर कहा कि अच्छा ये तीसरे हैं, तीसरे बुजुर्ग को जाके एक मुक्का मारा। तो उन्होंने जल्दी से मुड़ के हाथ पकड़ लिया, बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी? उन्होंने जो है पीछे मुड़ के हाथ पकड़ लिया कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी मेरी पीठ से? वाकई में है, मजाक में। तो ऐसे अल्लाह वालों के रंग होते हैं। तो उनके उस्ताद ने उनको समझाया कि देखो, पहले जो बुजुर्ग थे उन्होंने सोचा कि भाई मुझे आखिरत के मिलियन बिलियन मिल रहे हैं, अल्लाह के जिक्र में लगा हूँ, फरिश्तों की आमद है। अब किसी ने मुक्का मार दिया, अब मैं क्या तहकीक करूँ किसने मारा, कौन है, क्या बदला लूँ? तो मेरे 5 मिनट ज़ाया होंगे, तो मैं उसमें मजीद जन्नत के अगले दर्जात में पहुंच जाऊं और उसको माफ कर दूं तो मुझे अल्लाह वैसे दे देंगे जन्नत का महल। और आगे आगे उन्होंने पलट के भी नहीं देखा क्या मामला है, बात खत्म। दूसरे बुजुर्ग ने जो पलट के मारा, उसकी सिर्फ ये वजह थी कि उन्होंने ये सोचा कि कहीं इस पर मेरी बेइज्जती करने से इस पे अजाब ना आ जाए अल्लाह का, इसलिए मैं अपना बदला ले लेता हूँ वैसा ही, ताकि ये अजाब से बच जाए, ताकि ये अजाब से बच जाए। बाज दफा ऐसा होता है बुजुर्गों की जो है इंसल्ट करने से फौरन अल्लाह का गजब नाजिल होता है। तो उन्होंने एहतियात इसमें समझी कि मैं अपना थोड़ा सा बदला ले लूं जितना है, ताकि ये जो है बच जाए, इसके ऊपर इसका कोई हिसाब ना हो। तीसरे बुजुर्ग में जो है उन पे रहमत का इतना गलबा था कि उन्होंने जो है अपनी तो उनको क्या तकलीफ याद रहती, उन्होंने कहा इस बेचारे को चोट लगी होगी, बेटा तुमको चोट तो नहीं लगी। तो ये अहलुल्लाह के रंग होते हैं, और इससे फिर दीन फैलता है। ये इकराम मुस्लिम इधर है, दूसरे की तकलीफ पर सब्र करना, दूसरे को उस पर भी दुआ देना, उसके बावजूद उसको तोहफे देना, उसके बावजूद उसको सलाम करना, कि बराबर बराबर का मामला तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन असल में वो ये है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे बताए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है आपस में सबका एहतराम करने की तौफीक अता करे। एक सबक है बच्चों की तरबियत का, और इसमें किताब है तरबियतुल बनात, ये जो है दारुल इशाद की एक किताब है, उसमें एक दो हकायतें किस्से लिखे हुए हैं, तो उसमें इंशाल्लाह उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। बचपन की तरबियत बड़े होकर काम आती है। फरमाते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी वालदा के साथ घर के बाग में तफरी के लिए दाखिल हुई, घर के बाग में दौड़ रही थी, तो उसने वहाँ एक टेढ़ा दरख्त देखा। जैसे बाज दरख्त होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, दूसरे सब दरख्त सीधे सीधे थे ऊँचे ऊँचे, ये दरख्त टेढ़ा सा था। तो उसने अम्मी से पूछा, ऐसा लगता था कि झुक जाएगा, अभी गिर जाएगा ये दरख्त। अम्मी से पूछा कि अम्मी जान ये दरख्त टेढ़ा क्यों है? अम्मी ने फरमाया कि बेटी, माली ने यानी बागबान ने जब ये दरख्त छोटा था उसको दुरुस्त नहीं किया और सीधा करने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये टेढ़ा हो गया जैसे तुम देख रही हो। बच्ची ने पूछा, अम्मी जान क्या अब ये सीधा नहीं किया जा सकता? मोटा सा दरख्त है और टेढ़ा हो गया, अब उसको कौन सीधा किया? अम्मी ने फरमाया कि नहीं बेटी, अब इसको सीधा करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अब बड़ा हो गया है। हजरत फरमाते हैं, इसी तरह ऐ बेटी, वो बच्ची जो बचपन में आदाब न सीखे और तहजीब न सीखे, वो बड़े होकर बुरे अखलाक वाली और टेढ़ी हो जाती, बड़ी उम्र में इसलाह करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों की तरबियत में, क्योंकि बच्चे नरम होते हैं, बचपन से ही यानी तवज्जो कोशिश की जाए, एक आयत का ये मकसद है। एक जो है हिस्सा उसमें बहन भाई की मोहब्बत का, इसमें हजरत ने जिक्र किया है कि अब्बू ने दो बच्चों को बुलाया, एक लड़का था उसका नाम अहमद था और एक लड़की थी उसका नाम हमीदा। उन्होंने बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें सैर व तफरी के लिए, घुमाने के लिए एक बाग में लेकर जाऊंगा। फिर कहा कि इंतजार करो, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी से उछल कूद करने लगे। इस उछल कूद में अचानक अहमद का मटका टूट गया, यानी उसका खिलौना टूट गया, और जो है उसकी ठीकरियां मिट्टी के टुकड़े बिखर गए। वो बच्चा जो है वो रोने लगा। उसकी बहन ने उसको चुप कराया, बहन ने चुप कराया कि उसको दुरुस्त करने की कोशिश की, लाओ हम जोड़ देते हैं तुम्हारा खिलौना। इतने में अब्बू बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि नुकसान हो चुका है, खिलौना टूट चुका है, तो उससे उनके चेहरे पर नाराजगी हो गई। तो बच्ची ने, हमीदा ने ऐसी बात कही तो झूठ भी नहीं थी, लेकिन अब्बू उससे यह समझे कि ये बच्ची ने तोड़ा है। बच्ची ने ये कहा कि अब्बा जान, हम आपके बच्चे हैं, हम पर नाराज मत होइए, तो अब्बा ये समझे कि इसने तोड़ा है। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है कितनी मेहनत के बाद चीज बनती है, तुमने आराम से तोड़ दिया, अब गुस्सा कर ना करूं तो क्या करूं। तो जो है बहन ने कुर्बानी देते हुए कहा कि अब्बा जान, आप मुझे जो सजा दे दें मैं आपकी हर बात मानूंगी, इतने तमीजदार हो। अब्बा ने कहा, बस सजा यह है कि तुम हमारे साथ सैर को नहीं जाओगी। बच्ची ने खामोशी से सर को झुका लिया। अब बच्चे ने जो ये सूरत हाल देखी, अहमद रोता हुआ बाप से लिपट गया और कहा कि अब्बा जान, बहन बेकसूर है, उन्हें छोड़िए, सजा न दीजिए, मैंने ये नुकसान किया है, असल बात यह है कि मैंने थोड़ा, सजा का मैं मुस्तहिक। अब बाप को ये बात मालूम हुई, उन्होंने दोनों की मोहब्बत देखी कि बहन ने भाई को बचाने के लिए कैसा उसके जो है फॉल्ट को कवर किया और खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। तो अब बाप बहुत खुश हुए, कहने लगे कि तुम मेरी जान हो, हमें तुम्हारी मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई, अब मेरे दिल से तमाम नुकसान का एहसास भुला दिया गया, अब मैं दोनों को सैर के लिए ले जाऊंगा। फिर अब्बा दोनों को सैर के लिए ले गए, दोनों बच्चे खुशी खुशी घर लौटे और उन्होंने अब्बा के लिए लंबी जिंदगी की दुआ दी कि अल्लाह हमें अब्बा को लंबी जिंदगी दी। तो भाई ये जो है ना, अखलाक आदाब सिखाने के लिए छोटे छोटे किस्से इस तरह कहानियों में लिखे जाते हैं, ये ऐसा ना हो कि गलती किसी और की है और किसी पे खुशी जो है दूसरे ने कहा कि मैंने तोड़ा है, ताकि दूसरा बच जाए। और जो है जब बात वाजी हुई तो सब घर वाले आपस में खेल, तरह कोई वाकया हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो कोई एक आदमी जो है उसमें सुलह सफाई कराते, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं, टूटना ही था। तो अल्लाह ताला जो है उन ऐसे घरानों पे रहमत नाजिल फरमाते, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो फौरन उसमें जो है इस तरह की कुछ रवायतें, कुछ किताबें लाकर इसमें हलके में इंशाल्लाह पढ़ी जाएंगी। हजरत तशरीफ लाए थे हजरत मुफ्ती नवाल रहमान साहब, कल फरमा रहे थे, बहुत से हम लोगों ने उनसे सीखा, फरमा रहे थे कि कुरान शरीफ में से भी जो है इलाज होता है। तो अभी कुरान शरीफ के बाब में पढ़ा जाएगा कि बाज वैसी आयतें हैं उनमें शिफा है, बाज ऐसी आयतें हैं जिनसे जो है इन घरों में इस तरह की चीज़, बच्चों में ज़िद्दीपन है वो भी दूर होता है, तो उन उस नियत से भी पढ़ा जा सकता है इंशाल्लाह, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब है बहुत मशहूर, इसका नाम है शौक़े वतन, हर मुसलमान के असली वतन यानी आखरत की नेमतों का जिक्र, उसका शौक़ और अल्लाह की मोहब्बत दिल में लाने के लिए तरीक़ा, उसका तरीक़ा भाई आगे जो आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए। उसकी मुस्तनद हदीसें हजरत ने जमा की, और बाज़ मरतबा लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन होता है, उसका भी बहुत सवाब है, तो उसके बारे में भी रवायत नकल की गई। उसमें बुखारी शरीफ की रवायत लाए हैं जो मिशकात शरीफ की किताब में भी है। अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि किसी मुसलमान को कोई मुशक्क़त और तकलीफ और फिक्र और रंज और अज़ियत और गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा भी लग जाए जिसमें उस तकलीफ अज़ियत के गुनाहों का कफारा ना हो जाता हो। कोई तकलीफ पहुंची अगर उसमें वो सब्र कर ले तो उसके लिए बहुत अजर सवाब। जाबिर रदी अल्लाह से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे साहिब से फरमाया कि बुखार को बुरा मत कहो, वो बनी आदम के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को दूर करती है। और हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया कि एक रात के बुखार से एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, एक रात के बुखार से एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अनस रदी अल्लाह से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला फरमाते हैं, जब मैं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीजों यानी आँखों की मुसीबत में गिरफ्तार करता हूँ, फिर वो सब्र करता है तो उसके एवज में जन्नत देता हूँ। बुखारी शरीफ। मोमिन का किसी हाल में नुकसान नहीं, किसी हाल में नुकसान नहीं, नहीं पहुंच गया कोई, बस अगर अल्लाह पे यकीन है और उसकी सिफात है उसके पास तो हर हाल में कामयाब हो जाएगा। जाफर मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु से वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को एक अंसारी के सरहाने देखा, यानी मौत के फरिश्ते को देखा एक सहाबी के पास। फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, मेरे सहाबी से नरमी करो कि वो मोमिन है, मलकुल मौत ने कहा कि आप दिल खुश रखिए और आंखें ठंडी रखिए और यकीन कीजिए कि मैं हर मुसलमान के साथ नरम हूँ। ऐसी बशारत दी। हजरत ने इस किताब में ऐसी बशारतें जमा की हैं कि जो कोई हमारे बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए तो अच्छा गुमान करना चाहिए और सारी चीज़ें, या कोई बहुत तकलीफ बीमारी में है और आगे परेशान है तब क्या होगा, इतनी इतनी नेमतें मिलेंगी, ऐसे ऐसे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, तो आदमी खुश हो जाए, उसकी जो है परेशानी दूर हो जाए। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत में सबसे छोटे दर्जे का आदमी वो शख्स होगा जिसको अपने बाग और अजवाज और सामान नेमत और खिदमतगार और खुशी के असबाब 1,000 बरस की मुसाफत तक नजर आएंगे। ट्रेवलिंग डिस्टेंस 1,000 साल का, उतनी दूर तक उसको अपनी चीजें अपनी बादशाहत नजर आएगी। और सबसे ज्यादा मुआज़्ज़िज़ वो आदमी होगा जो अल्लाह ताला के दीदार से सुबह शाम मुशर्रफ होगा, सुबह शाम उसको अल्लाह ताला की मुलाकात, अल्लाह का दीदार होगा। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत अपनी नियामतों में मशगूल होंगे, दफतन अचानक उनके रूबरू एक नूर बुलंद होगा कि देखते हैं कि ऊपर से अल्लाह ताला का जहूर हुआ, इरशाद होगा अस्सलामु अलैकुम या अहलुल जन्ना। और इस आयत की भी तफसीर है, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सूरह यासीन में आयत है। बस हक ताला अहले जन्नत को और अहले जन्नत अल्लाह ताला को देखेंगे और जब तक उधर देखते रहेंगे किसी और नेमत की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उनसे पर्दे में हो जाएगा और नूर जो उसका असर है बाकी रह जाएगा। ऐसी ऐसी नेमत अल्लाह ताला को देखेंगे तो जन्नत की सारी नेमतों को भूल, और जन्नत की नेमतों का जिक्र जो होता रहता है वो एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं कि जन्नत में क्या मिलेगा, सोने चांदी के महलात, दूध और शहद की नहरें, ऐसे दरख्त जिनका साया 100 साल में तय हो, घोड़े पर बैठकर एक दरख्त के नीचे दौड़े तो 100 साल में एक दरख्त खत्म नहीं हो रहा। जन्नत के फल दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठे, मक्खन से ज्यादा नर्म, जन्नती औरत का दुपट्टा दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर। तुम्हारी माँ बहनें पर्दे में रहती हैं, उनको ऐसा दुपट्टा दिया जाएगा कि पूरी दुनिया की कीमत उसके बराबर नहीं हो सकती। सबसे कम दर्जे का आदमी उसको 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे, 30 साल या 33 साल की उम्र होगी, हमेशा हजारों हजार साल बागात में तफरी, महलात में आयश, न किराया, न लीज, न फीस, न टैक्स, न धुआं, न बदबू, जितना चाहे खाएं, जितना चाहे पिए, बाथरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं। तो ऐसी आलीशान जन्नत जिसमें महल, बाग, नहरें, फूल, जेवरात, चमकते हुए लिबास, वो अभी मौजूद है और डेकोरेट की जाती है, मोमिन के लिए सजाया जाता है। तो जन्नत का शौक़, अल्लाह से मुलाकात का शौक़, आखरत का शौक़, उसमें क्या है कि मखलूक के लोगों के झगड़ों से आदमी अपना दिल फारिग कर ले, सबके हक अदा कर दीजिए, आपका ये हक है, आपका ये हक है, आपका ये हक है, अब मैं अल्लाह के लिए फारिग हूँ, गुनाहों से बच जाएँ, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दूसरों पर रहम शफ़क़त, सबके लिए दुआ, दीन की मेहनत और अम्बिया फरिश्तों के अखलाक, ये लाने की एक मेहनत है कि जन्नत में ऊंचे से ऊंचा पहुंच जाए। अल्लाह ताला हमें आपको सबको तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ से मुताल्लिक एक दो बातें पढ़ी जाएंगी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिस आदमी ने कुरान हिफ्ज किया अल्लाह ताला मरते दम तक उसकी अकल से नफा पहुंचाएंगे, यानी आखिरी उम्र तक उसकी अकल और होश व हवास कायम रहेंगे। कुरान याद करने का कितना बड़ा फायदा, आखिरी उम्र तक उसके होश व हवास कायम रहे। साहिब कुरान अपनी कब्र से निकलेगा तो कुरान मजीद एक आदमी की शक्ल में, एक दुबले थके आदमी की शक्ल में कारी को मिलेगा। ये शक्ल इसलिए होगी कि कारी भी दुनिया में शब बेदारी, रोज़ों की वजह से कमज़ोर सा हो गया था। इस काबिल रहम शक्ल में अल्लाह की शिफात और रहमत ज़्यादा होगी। उस कारी से कुरान कहेगा, मुझे पहचानते हो? कारी कहेगा, मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ। कुरान कहेगा, मैं आपका साथी हूँ, मैं वो कुरान हूँ जिसने आपको गर्मी की दोपहर में प्यासा रखा, रातों को बेख्वाब किया, आज हर ताजिर को उसकी तिजारत की कीमत और मुनाफा मिलेगा, और तुम्हारी आखरत की तिजारत सबसे ऊंची और ज़्यादा मुनाफे वाली है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत मिलेगी। इस पर कुरान वाले के दाएं हाथ में जन्नत की बादशाहत, बाएं हाथ में नेमतों का परवाना थमा दिया जाएगा और सर पर इज्जत का ताज रख दिया जाएगा, और उसके वालदैन को जन्नत के ऐसे जोड़े पहना दिए जाएंगे जिनकी कीमत कुल कायनात से भी पूरी नहीं हो सकती। वालदैन कहेंगे, हमें ये कपड़े किस अमल के बदले में दिए गए? फरिश्ते कहेंगे, तुम्हारे बच्चे और बच्ची के हिफ्ज़ कुरान और तालीम कुरान के बदले में। फिर कुरान वाले से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, यहाँ तक कि आखिरी आयत ख़त्म कर लेगा। ये जो है अहमद में बहेकी है, तो इसकी रवायतें हैं बुरैदा रदी अल्लाह से। भाई अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खूब जो है कुरान पढ़ने के लिए बावजू होना शर्त नहीं है, अगर जिसको याद है तो चलते फिरते कुरान पढ़ सकते हैं, अलबत्ता बदन और कपड़े नजासत से पाक हो। और वजू करके पढ़े, नमाज में पढ़े, मस्जिद जाके पढ़े, हरम शरीफ में पढ़े, सवाब बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे कोई गाड़ी में जा रहे हैं और किसी को पढ़नी है तस्बीह, और अगर वो नजासत की हालत में नहीं है तो वो कुरान शरीफ पढ़ सकता है, हर वक्त पढ़ सकते हैं, इल्ला ये कि कोई आदमी जो है नजासत की जगह है, या जैसे कोई बाथरूम है, या जिस पर गुसल वाजिब हो, उस वक्त कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वजू की शर्त नहीं है, अब हर वक्त जो है कहीं जा रहे थे गाड़ी में, वजू नहीं है, लेकिन कुरान तो पढ़ सकते हैं आप उसे। तो जय हमें जो है जो सूरतें याद हों तो चलते फिरते आते जाते गाड़ी में चलते फिरते कुरान शरीफ पढ़ लेना चाहिए। सुबह है सूरह यासीन पढ़ ली, जिनको याद है वो जुमे को जाते जाते सूरह कहफ पढ़ लिए, तो कुरान शरीफ के बहुत फजाइल और बरकात हैं माशाल्लाह। हज़रत शेख मुश्ताक साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने फरमाया कि लकड़ी पत्थर कपड़े का काम करने वाले को रोजी अल्लाह देता है, तो कुरान को अपना बनाने वाले को कैसे छोड़ देंगे? लकड़ी को पॉलिश करके हजारों कमाए, तो दिल के जाहिर और बातिन को साफ करो तो कितनी बरकत देंगे? कुरान को पकड़कर वो बादशाह हुए, सारी दुनिया में बरकत मिली, और कुरान को छोड़ के जिल्लत और मिस्कीनी मिलेगी। उन्होंने मिसाल बताई हजरत ने कि सालिम एक गुलाम थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बाजार में बिकते थे, तो बाजार में बिकने के लिए लाए गए, कौन खरीदेगा गुलाम, नौकर कौन खरीदेगा, गर्मी इतनी जो है वहाँ रेगिस्तान में, भूखे प्यासे, तो उनका ये हाल था। बाद में क्या हाल हुआ, मुसलमान हो गए, कुरान सीखा, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी इतनी इज्जत दी, मस्जिद कुबा की मस्जिद में इमाम हो गए, जहाँ के उमर फारूक रदी अल्लाह ने उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। इतनी जो है कुरान जो पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला इज्जत। मुफ्ती नवालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए, उन्होंने कल फरमाया जो कि कुरान शरीफ से इलाज हदीस से साबित है। फरमाया कि जो कहीं घर में बच्चे ज़िद्दी नाफरमान हो तो उनको ये आयतें पढ़कर दम कर सकते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत 7 और 8, 7 और 8 सूरह अहज़ाब, और सूरह मरियम की आयत 30 से 33 तक। सूरह मरियम की आयतें 30 से 33, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में वो बोले थे, उनका एक मौजज़ा है, तो जो बातें वो बोले थे इन्नी अब्दुल्ला, वो आयतें जो हैं पढ़कर बच्चों का दम कर। अल्लाह साहब फरमा रहे थे कि खाने पर जो है वो या सलामो आदमी पढ़ ले 21 मरतबा और खाने पर दम कर दे, और फिर घर वाले खाएं, इंशाल्लाह गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो बहुत अल्लाह के नाम में और चीज़ों में बरकत है, और वज़ायफ़ का सारा फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम जो है सारे गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सबको तौफीक दे दे गुनाहों से बचने की। ये किताब है मौलाना हकीम अख्तर साहब दामत बरकातहुम के शागिर्द हैं मौलाना अरसलान साहब, उनकी किताब है गुनाहों का समुंदर और अल्लाह की रहमत की वसअत। गुनाहों का समुंदर और अल्लाह की रहमत की वसअत, उसमें उन्होंने ऐसी वाकयात बयान किए हैं जिससे आदमी को शौक़ पैदा हो जाता है दीन का, और तौबा की उम्मीद बढ़ जाती है। फरमाया कि एक अल्लाह वाले ने दावत की मजलिस के आखिर में इज्तमाई दुआ की कि या अल्लाह, हम में से जिसका दिल ज़्यादा स्याह है और जिसकी आँखें ज़्यादा खुश्क हैं और जिसकी गुनाह का ज़माना ज़्यादा करीब है, उसकी मग़फ़रत कर दीजिए। अल्लाह वाले ने ऐसी दुआ की कि या अल्लाह, मजलिस में यानी जो आदमी ज़्यादा गुनहगार है, कभी रोता भी नहीं अल्लाह के खौफ से, उसका दिल भी स्याह हो चुका है, उसको भी बख्श दीजिए। एक आदमी उस करीब बैठा था जिसने सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी थी, उसने खड़े होकर कहा कि ये दुआ फिर कीजिए। کیونکہ تم سب میں میں ہی زیادہ سیاہ قلب اور خشک آنکھ اور قریب المعصیت ہوں، میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ ایک آدمی نے توبہ کر لی، اس وقت نادم ہو گیا، کہنے لگا میں ہی ہوں، میرے لیے سب لوگ دعا کر۔ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ اس دوسری رات میں میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ مجھے ہمیں یہ اچھا معلوم ہوا کہ تم نے میرے اور میرے بندے کے درمیان صلح کرا دی، تو میں نے تجھے اور ساری مجلس والوں کو معاف کر دیا۔ ایسی جو ہے اللہ کے ہاں رحمت کے بہانے اور بخشش کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت نے لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہ کا بہت عادی تھا، بال سفید ہو گئے تھے بڑی عمر کا، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ ایک دن شرمندگی ہوئی، فکر ہوئی کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو کیا وہ معاف فرما دیں گے؟ ایسے بعض دفعہ دین کی تڑپ ہوتی ہے آدمی کو، بعض بچے جو ہے وہ غلط اس میں پڑ جاتے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے یعنی بچپن کی عمر سے لے کے یونیورسٹی تک پہنچ گئے، اور بعض ایسے گناہ میں مبتلا ہیں کہ معلوم نہیں، لیکن آخر میں جا کے کہیں پہ ہوتا ہے کہ میری توبہ ہو سکتی ہے، ایسا ایسا ہوگا۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت گناہ کا عادی تھا، بال سفید ہو گئے، ایک دن شرمندگی ہوئی کہ میں اللہ سے معافی مانگوں تو کیا معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ کے دربار سے معافی نہ ملی تو کہاں سے ملے گی؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے رب العالمین، میری تمام عمر گناہ میں گزر گئی، اب تو میری عمر کی شام ہے، کیا تو ایسے گناہ گار کو بھی بخش دے گا؟ اس کو ندا آئی، یعنی اس کو بتایا گیا کہ اے میرے بندے، گھبراتا کیوں ہے؟ جب تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی منہ موڑ لیا، جب تو نے گناہ کا پیشہ اختیار کیا تو میں نے مہلت دی، جب تو نے میری طرف منہ کر لیا اور مجھ سے مغفرت چاہی تو میں نے مغفرت عطا کر دی، اور جب تو نے مجھے دوست رکھا تو میں نے بھی تجھے دوست رکھا، مغفرت ہو۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ نے توبہ کو اتنا آسان رکھا ہے۔ فرماتے ہیں توبہ ٹوٹی پھر توبہ کر لیں، وضو کی طرح، توبہ ٹوٹی پھر توبہ کر لیں، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، مایوس ہیں، جہنم میں ہیں، تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جہنم میں کیوں ہو؟ فوراً ایسا استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ، اور توبہ کرو، اور ایسی چیز ہے توبہ کے منٹوں میں جہنم کے نچلے درجے سے نکال کے جنت کے اونچے درجات میں پہنچا دیتی۔ جہنم میں کیوں ہو، باہر نکلا۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ صبح کے بھٹکے ہوئے شام کو آ جائیں، رات کے نافرمان صبح کو آ جائیں، پہاڑوں کے برابر گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ وزن نہیں رکھتا۔ ایک بزرگ جو ہے وہ طواف کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جو ہے معصوم بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ گناہ ہو ہی نہ۔ ان کو آواز آئی کہ بندہ تو جو ہے دوسری توبہ کی کھڑکی سے میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ ایک تو معصومیت کی کھڑکی ہے اور ایک ونڈو ہے توبہ کی کھڑکی، وہاں سے آ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو بھائی ہم جو ہے اللہ سے مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے برکات اور اس کی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور محترم بھائیوں بہنوں، دعا پر محنت کریں ہم۔ دعا کا ٹریک ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حل ہے، رب کریم کی بارگاہ میں ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ کریم ہیں، بغیر کوالیفیکیشن کے دیتے ہیں، اور سخی ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، بادشاہ ہیں۔ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ اور دوسری عبادات فرائض کا خیال نہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ نماز ٹوٹ گئی، دہراؤ، روزہ ٹوٹ گیا، دہراؤ، حج ٹھیک سے نہیں ہوا، پھر جاؤ۔ دعا جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی، جس طرح چاہو اللہ سے، جس زبانیں مانگو، بیٹھے لیٹے ہوئے، وضو ہے نہیں ہے، یعنی آداب تو ہیں کہ ایسے ایسے مانگو زیادہ اثر ہوگا، لیکن کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھے ہوئے مانگنا شروع کر دیا اللہ سے، چلتے پھرتے راستے جہاز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، دفتر میں چڑھتے ہوئے، ایلیویٹر میں، گاڑی میں جاتے ہوئے، یا اللہ یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہو، اگر اور کسی چیز کا موقع نہیں ملا، کچھ ذکر نہیں معلوم، عربی نہیں جانتے، نہیں جانتے، کتاب نہیں ہے، وضو نہیں ہے، وہ دعا کرتے ہو۔ دعا کا ٹریک ایسا ہے کہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی اس کی وہ کوئی ممانعت نہیں ہے، دل میں دعا کرتا رہے آدمی، یعنی باقی چیزوں میں شرائط ہیں، اس میں جو ہے شرط نہیں ہے، بس آدمی دعا کرتا رہے۔ دنیا کے بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو معمولی سی چیز کو گولڈ کے وزن سے تول کے دیتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا تحفہ لائے تھے پلاسٹک کا، بادشاہ نے کہا اس کو گولڈ سے تولو، اتنا گولڈ انعام میں دو، عام طور سے ایسا دیا جاتا۔ تو دنیا کے بادشاہ جب ایسا کرتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو کتنا دیں گے۔ तो इस तरह आदमी को दुआ मांगना चाहिए, ज़ौक शौक से बच्चों की तरह मांगना चाहिए कि अल्लाह आप नहीं देंगे तो कौन देगा, हम आपसे लेके जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। आदमी अलग से बैठ के अल्लाह से मांगे, इसरार से बार 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 मांगे, इंशाल्लाह जो है दुआ होगी। और ये सिर्फ तालीम के वास्ते है कि हमें समझ में आ जाए कि ऐसी दुआएं भी हम मांग सकते हैं। और असल ये है कि कभी दिन में, सुबह में, शाम को अकेले बैठकर ये दुआएं मांगी जाए। इंशाल्लाह एक ऐलान ये है कि अगले हफ्ते से यहाँ पर मकामी, चूँकि नमाज का वक्त बदल रहा है, तो हलका जो है वो तकरीबन 7:15 सियाटल टाइम पे शुरू होगा, यानी आज जैसे शुरू हुआ 15 मिनट देर से शुरू होगा 7:15 सियाटल टाइम से। गर्मियों में ये थोड़ा सा वक्त और बढ़ता है, उम्मीद है कि आपको उसमें तंगी नहीं होगी। तो जो भी सुनने वाले हैं, जो भी यहाँ पर हैं, कोशिश ये करें अगर ये बात अच्छी है तो अपने और दोस्तों को, आस पड़ोस में लोगों को तरगीब दें कि वो भी ये बात सुन सकते हैं हल्का, और इस तरह की फजाइल की किताबें वो अपने घरों में पढ़ सकते हैं, और हफ्ते में 1 घंटा निकाल कर ये हल्का इस तरह सुन सकते हैं। तो जिसको जहाँ मौका हो वो आप अपने आगे या खानदानों में, दोस्तों में इसको फैला सकते हैं। तो अब जो है दुआ फरमाएं, अल्लाह सुबहान व तआला हमारे अमल को कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलिहि व सल्लम तस्लीमा। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या जुल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क्यूम। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, या अल्लाह आप बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं। या अल्लाह हम गलतियों पे गलतियां करने वाले हैं, आप मेहरबान हैं, माफ़ करने वाले हैं। या अल्लाह हम फ़कीर हैं मगर आप बहुत अता करने वाले हैं। हमारे नेक अमल कमज़ोर हैं मगर आप पहाड़ों का सवाब दे सकते हैं। या अल्लाह हम जाहिल हैं लेकिन आप ही इल्म और हिदायत देने वाले हैं। या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन आपके ख़जाने में सब कुछ है। अल्लाह हम नाशुक्रे हैं, बेसब्रे हैं मगर आप नेमतों पर नेमतें बढ़ाते वाले हैं। अल्लाह हमारी तौबा बार बार टूट जाती है मगर आप अपने दरबार से नहीं निकालते। या अल्लाह हम बेअदबी करते हैं लेकिन फिर भी आप दरगुजर फरमा देते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या जल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क्यूम। या अल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमाइए। या अल्लाह उम्मत को बख्श दीजिए। या अल्लाह उम्मत की गलतियों पर पर्दा डाल दीजिए। या अल्लाह उम्मत में जो बीमार हैं उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाइए। जो तंगदस्त हैं, मकरूज़ हैं, उनको आसान रिस्क अता फरमाइए। या अल्लाह जो इल्म दीन सीख रहे हैं उनको नफ़ा देने वाला इल्म दीजिए, बरकतें दीजिए, दीन की खिदमत में कबूल फरमाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत को खौफ से, दुश्मनों से अमन अता फरमाइए। या अल्लाह उम्मत की परेशानियों को खुशी से बदल दीजिए। या अल्लाह उम्मत की बेइज्जती को इज्जत से बदल दीजिए। या अल्लाह हिदायत की हवाएं चला दीजिए। या अल्लाह सबको ईमान, हिदायत, तकवा नसीब फरमाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत में, पूरी दुनिया में जितने खैर के नेक काम हो रहे हैं या अल्लाह उनको बढ़ा दीजिए, बरकतें, तरक्की, कबूलियत अता फरमाइए। या अल्लाह जितने फितने, फसाद, बेशर्मी के काम हो रहे हैं अल्लाह उन सबको ख़त्म फरमाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत में वालदैन हैं, बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, या अल्लाह उनको नेक सालेह रिश्ते अता फरमाइए। या अल्लाह सबको खुशियाँ अता फरमाइए। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या जल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क्यूम। या अल्लाह आपका शुक्र है। या अल्लाह तमाम मखलूक़ात की तादाद के बराबर आपका शुक्र है। या अल्लाह आपके अर्श के वजन के बराबर आपका शुक्र है। या अल्लाह आपका शुक्र है हर पलक झपकने के वक्त और हर सांस लेने के वक्त। या अल्लाह आप सब कुछ देखते हैं, सब जानते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। या अल्लाह आपके पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, मग़फ़रत के ख़जाने, सेहत के ख़जाने, चैन सुकून के ख़जाने, इज़्ज़त के ख़जाने, माल औलाद के ख़जाने। या अल्लाह हमें हर भलाई अता फरमाइए, हर मुश्किल से बचा दीजिए। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह, अगले पिछले, सगीरा कबीरा, सब माफ़ फरमाइए। या अल्लाह गलतियों पर पर्दा डाल दीजिए। या अल्लाह बुराइयों को नेकियों से बदल दीजिए। या अल्लाह आप ज़मीन आसमान के नूर हैं, मज़लूमों के, बेकसों की फरियाद सुनने वाले हैं। या अल्लाह गमज़दा का गम दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह बेचैन जो लोग हैं उनको राहत आराम फरमा दीजिए। या अल्लाह आप करीम हैं, बग़ैर इस्तेहकाक के अता फरमाते हैं। या अल्लाह हमारा कोई हक नहीं है। या अल्लाह जितने नेक अमल हैं सब आपकी तौफीक से हैं। या अल्लाह जितनी नेमतें आपने अता फरमाई हैं, या अल्लाह सब आपकी अता है, आपकी नेमत है। या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें उतरती हैं रमज़ान में, काबा शरीफ में, रात के आखिरी पहर में, हज उमरे में, या अल्लाह जहाँ जहाँ अहलुल्लाह की मजालिस में आपकी जितनी नेमतें उतरती हैं, या अल्लाह हम किसी चीज़ के मुस्तहिक नहीं हैं। या अल्लाह हम मोहताज हैं। या अल्लाह हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आप करीम हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.